पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
सन 1727 में, ये तो अभी बहुत निकट की बात है, 300 वर्ष पहले, जब आदरणीय संत गरीबदास जी 10 वर्ष के थे और अपने ही खेतों में गौवे चरा रहे थे, आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा के अंदर इनका जन्म हुआ। किसान यानी जाट कौम के अंदर इनका जन्म था और ये वहां गरीबदास साहेब जी के लगभग 1450 एकड़ जमीन थी। बहुत रहीस घर में जन्म था। किसान होने के नाते फिर भी सभी अपना कार्य हाथ से किया करते थे। सैकड़ों गायें रखते थे घर वाले। पढ़ाई पहले शिक्षा नहीं थी, शिक्षा तो अब ये परमात्मा ने दया की है आपके ऊपर, शिक्षा अभी इसका प्रचार करवाना था आप जी को, सदग्रंथ समझाने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए। 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी स्वयं अपनी 100-150 गौओं के दोना गोपाल बनकर गए हुए थे पाली, और साथ में 5-7 और बच्चे गांव के बड़े छोटे, कुछ किराए के व्यक्ति वहां गौवें चरा रहे थे। गांव कबलाना है, गांव छुड़ानी से उनकी सीमा लगती है कबलाना गांव। उस सीमा के पास गरीबदास जी महाराज जी के अपने खेत थे, बहुत लगभग 100 एकड़ जमीन थी। पहले वर्षा हो जाती थी तो कहीं फसल बीज देते थे, अन्यथा चरागाह के लिए बहुत स्थान छोड़ दिया करते थे, पशु पालन करते थे। उसमें गरीबदास साहेब जी गौवें चरा रहे थे, साथ में 8-7 और पाली यानी गोपाल थे। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी सन 1518 में सह शरीर गए थे सतलोक में, और फिर सन 1727 में फिर परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बना के वहां, जहां गरीबदास साहेब जी गव्वें चरा रहे थे 10 वर्ष के बालक, वहां सतलोक से आकर प्रकट हो गए लगभग 200 वर्ष के उपरांत, एक साधु वेशभूषा में, जिंदा की रूप में। जिंदा महात्मा होते मुसलमानों में, वो एक काला सा टोप पहनते ऊपर ऐसे छोटे से वाला, और एक काला ही ओवरकोट पहनते हैं घुटनों से नीचे वाला, एक अंडरवियर लंबा सा पहनते हैं। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। उस रूप में वहां आगे जहां बालक दोपहर के समय जंडी के पेड़ के नीचे छाया में बैठी थी, गौवें कहीं बैठी थी दूसरी पेड़ों के नीचे, कुछ घास चर रही थी और सभी जो गवाले थे वहां बैठे थे। अब परमात्मा जब वहां आकर जैसे ऐसे चलकर आए जैसे कोई रास्ते चलता अतिथि हो, तो परमेश्वर ने उनको नमस्कार कहा, राम राम कहा, सभी बड़े छोटे सब ने प्रत्युत्तर दिया, राम राम कहा और कहा महाराज जी आओ भोजन पाओ। वो खाना खा रहे थे पाली ग्वाले। परमेश्वर ने कहा भी खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना अपने गांव से खा कर आया हूं। पालियों ने पूछा आपका गांव कौन सा है, कि सतलोक है मेरा गांव। कितनी दूर है यहां से, परमेश्वर ने बताया कि 16 शंख कोस की दूरी पे। अब पालियों ने संख संख का पता नहीं था, वो 16 कोस सुन ली, 16 कोस, 16 कोस माने ये समझो 30-40-45 किलोमीटर दूर है। तो पालियों ने कहा, ग्वालों ने कहा कि महाराज जी आपको तो भूख लगी होगी इतनी दूर से चलकर आए हो। महाराज जी ने कहा परमात्मा ने कि नहीं भोजन नहीं खाऊंगा। तो पालियों ने कहा भोजन नहीं खाओगे, दूध तो पीना ही पड़ेगा। यानी अतिथि सत्कार करते हुए एक ऐसे प्यार से कहा कि नहीं दूध तो महाराज जी पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते बगैर कुछ आहार कराए। तो परमेश्वर ने कहा भी मैं तो कुंवारी गाय का दूध पीता हूं, कुंवारी गाय का दूध पीऊंगा। तो पाली कहने लगे, ग्वाले कहने लगे जो बड़े बड़े थे कि बाबा जी आप तो मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नियत नहीं है, आप मजाक मत करो, कुंवारी गाय कभी दूध दे सकती है। परमेश्वर ने कहा भी देख लो, यदि दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का ही पिया करता हूं। तब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, एक कुंवारी गाय को ले आए जो उनकी बहुत प्रिय थी, उसको लाकर खड़ा कर दिया, कहा बाबा जी देखो इसके बच्चा तो है ही नहीं, ये दूध कैसे देगी। अब पालियों के पास एक पात्र था, एक 5-7 किलो का, जिसमें लस्सी ले जाते थे, उसको फिर धो धाकर शेष समय में जल लाते थे कुएं से भरकर, वहां अपने साथ रखते थे। परमेश्वर ने कहा कि इसको अच्छी तरह साफ करो, इस पात्र को, इस छोटे मटके को, और इसके सतन के नीचे रखो, अभी दूध देगी। अब गरीबदास जी ने वो नीचे से वो पात्र पकड़ दिया, उसके थनों के नीचे कर दिया। अगले बाबा जी परमेश्वर कबीर जी ने कमर पर थपकी लगा दी, आशीर्वाद दे दिया, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर क्या भरते ही बंद हो गए। अब गरीबदास जी ने कहा कि ले भगवान आप पियो, आपने ही रजा बख्शी है। अब आधा दूध परमेश्वर ने पिया, ऐसे मुंह लाकर सीधा है, और आधा कहा ले वे पालियो ग्वालो तुम पी लो, ये दूध यहां का नहीं है, ये ऊपर के लोग ताया है। अब जो बड़े पाली ग्वाले थे वो कहने लगे हम ना पीवे, ये पाप का दूध है, कुंवारी गाय का दूध काट दिया तने, ये जादू जंतर का हम ना पीवे। वो तो उठकर चले गए। अब 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी बोले बाले पुण्यात्मा, उन्होंने कहा ला बाबा जी मैं पीऊंगा आपका जूठा दूध, और वो उन्होंने पान किया, वो तो सतलोक से आया हुआ था। तब परमेश्वर ने कहा बेटा भक्ति किया करो, मनुष्य जीवन वैसे नहीं मिलता। तो गरीबदास जी ने कहा जी हम भक्ति करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं अपनी 10-8 घंटा तक उन्होंने बताई, हम ऐसे भी करते हैं, श्राद्ध भी निकालते हैं। तो परमात्मा ने उनको डिटेल से समझाया, और परमेश्वर ने अपनी जो लीला वो किया करते हैं वो लीला की, और गरीबदास जी के अंदर प्रबल प्रेरणा होगी कि प्रभु हम कहां से आए हैं, वो स्थान एक बार मुझे दिखा दो। तब परमेश्वर उनकी आत्मा को, उस प्यारी आत्मा को शरीर से अलग करके सचखंड लेकर गए सतलोक में। रस्ते में सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी के लोक दिखाए, दुर्गा का लोक दिखाया। ये नकली सतलोक अलकलोक और अगम अनामी लोक काल ने रचना करवा रखी है, ब्रह्म लोक में वो दिखाए। जहां ये काल गुप्त रहता है वो स्थान दिखाया। अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मंडों का दायरा दिखाया कि ये अक्षर पुरुष के हैं। उसके बाद फिर अपने सचखंड में भंवर गुफा पार करके सचखंड में लेकर गए, सतलोक में लेकर गए। अब वहां क्या देखा, जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में पढ़ा कि उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी परिस्थिति आ जाती है हाहाकार मच जाता है, तो परमात्मा उन परिस्थितियों से प्रेरित होकर के पृथ्वी लोक पर आता है शांति स्थापित करने के लिए। और वो भासमान यानी हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके आता है। तीन प्रकार से वो लीला करता शरीर की, उसके तीन प्रकार से वो अपना यहां प्रकट होता है। जैसे एक प्रकार से तो सतलोक में सचखंड में एक बहुत बड़े गुमज में साकार रूप में विराजमान है, एज मनुष्य दृश्य शरीर है उनका, इतना तेजोमय शरीर है एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे दोनों की रोशनी भी फीकी पड़े। और उधर से वो एक अन्य हल्का तेज पुंज का रूप ना करके जन साधारण की तरह एक साधु संत रूप में आता है। और तीसरी लीला वो करता है शरीर से, जैसे एक बालक रूप धारण कर लेता है, शिशु रूप धारण कर। ऐसे तीन प्रकार से वो अपनी लीला करता है, ऐसे तीन प्रकार के वो शरीर है उस परमात्मा का। गरीबदास जी नीचे से गए, उनके साथ साधु रूप में थे परमात्मा। आगे जब सचखंड में पहुंचे तो वहां एक अलग से गुम्बज के अंदर, बहुत बड़े गुम्बज में गोल गोल गुम्बज सफेद सफेद बहुत लंबा चौड़ा, बीच में परमात्मा का सिंहासन लगा था, उस पर विराजमान थे वो परमात्मा जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी परमात्मा की अधिक रहे। नीचे से जो एक साधु रूप में आए हुए वापस गए थे प्रभु, वहां एक चंवर रखा था, वो चंवर उठाकर और सिर पर ढुराने लगे, सिर के ऊपर हिलाने लगे, तो गरीबदास जी की आत्मा ने, गरीबदास जी ने सोचा कि वो पूर्ण परमात्मा तो ये तख्त पर बैठा है, ये होगा यही है, और ये बाबा जी संत इसका नौकर है, इसके चंवर कर रहा है। उसी समय जो सिंहासन पर विराजमान थे प्रभु वो खड़े हुए, और नीचे से जो बाबा जी के रूप में परमात्मा गए थे संत के रूप में जिंदा के रूप में, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजो में शरीर जो भगवान दिखाई दे था वो उस बाबा जी पर चंवर कर रहे हैं एक सेवक की तरह। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं भाई बाबा जी बड़ा कमाल का संत, यू तो भगवान इसके ऊपर इसकी सेवा कर रहा है, इसकी चंवर कर रहा है। इतने में क्या हुआ, वो तेजो में शरीर जो बाहर चंवर कर रहा था वो देखते ही देखते जो नीचे से परमात्मा गए थे एक संत रूप में उसके अंदर समा गए। अकेले वो जिंदा महात्मा के रूप में वो परमात्मा उस सिंहासन पर विराजमान रहे और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है अपने आप। अब गरीबदास जी चरणों में गिर गए, ये भगवान आप तो हमें बका रहे थे, आप तो खुद परमेश्वर हो, मेरा बड़ा भाग्य उदय हुआ, आप मुझे भगवान खुद चलकर मिल गए, ये भगवान मुझे यहीं रख लो, मुझे वापस ना भेजो, वहां तो बहुत गंदा लोक है, हाहाकार मची है, इतना सुंदर लोक भगवान हमने कभी देखा ना सुना, मुझे यहीं रख लो। परमात्मा बोले नहीं बेटा वापस जाओ, मेरे गवाह बनो, सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने गरीबदास जी को, बेटा तुम्हारे साथ इनके साथ ऐसा धोखा हुआ है, वापस जा और मेरी महिमा का गुणगान कर, तेरे साथ रहूंगा गरीबदास, घबराइए मत ना। उधर से क्या हुआ कि गरीबदास साहेब जी 10 वर्ष के बालक परमात्मा के जो साधु रूप में थे उनके सामने बैठ गए थे ऐसे सुखासन पर जैसे आम आदमी बैठा होता है, और ऐसे बैठे बैठे उनकी शरीर से आत्मा निकाल ले गए परमात्मा, वो मृत तुल्य हो गए, लेकिन बैठे रहे जो के तो शरीर ऐसा ऐसा सती रहा। अब 2-3 घंटों के बाद वो दूसरे जो बड़े बड़े गवाले थे पाली थे वो आए, उन्होंने कहा कि उस लड़के को लाओ बुलाकर, कहा है वो अपनी गवों को घेरे, क्योंकि उनकी अपनी पारी होती थी 2-2 घंटे की, जब उनकी पारी आई तो उसको बुलाने गया एक पाली गवाला, उसने आवाज लगाई, रे गरीबू गरीबू, गरीबदास को गरीबू कहा करते थे, अरे गरीबू आजा तेरा नंबर आ गया गाय घेरने का, गाय चराने का। सामने बैठा दिख रहा है, आवाज लगा रहा है दूर से, लेकिन वो नहीं उठ रहा है, निकट जाकर देखा वो तो ऐसे बैठा है। अब उस पाली ने कहा, ए भगत जी पकड़ के हाथ खड़ा हो ले, बन गया साधक, उठ तेरा नंबर आया है। वो ऐसे लुट गए पीछे को, उनमें तो आत्मा नहीं थी। उसने आवाज लगाई कि भागो भागो गरीबू मर गया, वो सारे पाली भागे आए, देखा सचमुच ये तो मर गया। वो कहने लगे मरना ही था, इसने जंतर मंत्र का दूध पी लिया, जादू जंतर का दूध पी लिया। इकलौता पुत्र था, बहुत बड़ा रहीस उसका पिता था, 12 वर्ष के बाद अकेला पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसी की मृत्यु गांव में जब पता चला पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। छोटा सा गांव होता था उसने, कोई इधर दौड़ा कोई उधर दौड़ा, सारा गांव भाग दिया जहां उस बच्चे की लाश सौ पड़ा था, वहां से उठा लाए गांव में घर में लाए, घर से फिर इकट्ठे हुए, फिर उनको अंतिम संस्कार करने के लिए उस बच्चे के शरीर को चिता पर रख दिया गया था। उसी समय परमेश्वर ने गरीबदास जी से कहा, बेटा जा, तेरे शरीर को नाश करने वाले हैं, जल्दी। 1 सेकंड के अंदर परमात्मा ने उस आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। प्रवेश होते ही वो एकदम ऐसे उठे, सारे बंधन जो ऊपर बांध रखे थे अपने आप टूट गए, और नीचे उतर कर ये वाणी उच्चारण करने लगे परमात्मा ने जो उनके अंतःकरण में फीड करती थी। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने। अब ये आत्मा रोती है जब इसको ज्ञान हो जाता है कि मैं कहां फंस गई, इस काल ने हमारे साथ अपना एजेंट छोड़ रखा मन, इस आत्मा के संयोग से इसका जोड़ कर दिया, अब ये मालिक बन बैठा इस आत्मा का, ये पति बन बैठा स्वामी बन गया। मत तो दे दी है बालम याने नू, मत तो दे दी है बालम याने नू, मत तो दे दी है बालम याने नू, मत तो दे दी है बालम याने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा कर बरसाने नू। मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी।
बालम याने नू मत दे दिए बालम याने नू। जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलवाणे नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलवाणे नू। मत दे दी है बालम याने नू। मत दे दी है बालम याने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिर दे दाने दाड़े नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिर दे दाने दाड़े नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। मतो दे दी है बालम याने नू। मतो दे दी है बालम याने नू। मतो दे दी जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा ये भूल गए मर जाने नू। मत दे दिए बालम याने नू। मत दे दिए बालम याने नू। मत दे दी याने नू। मत दे दिए बालम याने। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुलमाने नू। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुलमाने नू। ज्ञान दारा से ध्यान दी तुरिया कोई जाने पाण रिसाने नू। मत दे दी है बालम याने नू। मत दे दी है बालम याने नू। मत दे दी महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुने भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। मत दे दी है बालम याने नू। मत दे दी है बालम याने नू। मत दे दी। अब गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा का साक्षात्कार उनकी महिमा उनकी सामर्थ्य अपनी अमृतवाणी में कदम तोड़ लिखा है। और क्या बताया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। अपनात्मा अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर आकर मिले अपने इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया सतलोक दिखाया उस श्रेष्ठ आत्मा को वापस छोड़ा। ऐसे ही परमेश्वर नानक साहिब जी श्री नानक देव जी को बेई नदी पर जिसमें नानक साहिब जी शादी शुदा थे वहां हो चुका था दो बच्चों का भी जन्म हो चुका था अपनी बहन की ससुराल में और वहां एक सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहां नौकरी करते थे और प्रतिदिन स्नान करने के लिए बेई नदी पर जाते थे तो दरिया साथ से बहती थी। सुल्तानपुर शहर पश्चिमी पाकिस्तान में, वर्तमान में, पहले भारत ही था पूरा। तो वहां परमात्मा समकालीन थे ये। परमेश्वर कबीर जी उनके पास गए थे, नानक देव जी के पास वहां मिले थे, बेई नदी पर किनारे पर स्नान करने जब वो गए हुए थे। अपना परिचय दिया पहले तो कि मैं ऐसे ऐसे काशी में रहने वाला धानक दुलाह हूं। नानक साहब जी से काफी चर्चा की। नानक साहब जी ने बताया कि मैं श्री कृष्ण जी की पूजा करता हूं, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्म था नानक जी का, और ब्रजलाल पांडे से ये गीता पाठ प्रतिदिन पढ़ा करते थे बचपन में, उन्हीं संस्कारों में रंगे हुए थे। श्री कृष्ण से ऊपर किसी को नहीं मानते थे। तब परमेश्वर कबीर जी और उनकी 2 घंटे वार्ता हुई थी एक दिन सुबह सुबह, और भी 10-20 श्रोता इकट्ठे हो गए थे जो स्नान करने के लिए गए हुए थे सवेरे सवेरे। तब कबीर साहब ने उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कहा कि गीता जी में ऐसा भी लिखा है, मान लीजिए आप कहते हो श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वैसे तो श्री कृष्ण जी नहीं काल दे रहे हैं गीता जी का ज्ञान, आप ही मानते हो तो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण जी तो नाशवान है। 4th अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी 10:18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और भी बहुत से डिस्कस। लेकिन नानक साहब जी ने हार नहीं मानी, परमात्मा वहां से चल पड़े। और उपस्थित व्यक्तियों ने पूछा ये कौन था, क्योंकि जिंदा महात्मा के रूप में थे वो। नानक साहब ने कहा कि धानक था, जुलाहा जाति का धानक था ये, काशी का कबीर नाम था इसका, ऐसे अटपट कर रहा था। अब वैसे उस ज्ञान से वो इतने प्रभावित हो गए थे नानक जी, अब घर पे आके वो पुस्तक गीता फिर देखा, ज्यों का त्यों पाया, अंतःकरण से पुकार की, क्योंकि वो भगवान को चाहने वाली आत्मा थी, वो महात्मा भगवान एक बार फिर आ जावे, मैं उससे श्रद्धा से सारी बात पूछूंगा, विवाद नहीं करूंगा। कुछ महीनों के बाद परमात्मा फिर उसी समय सुबह स्नानार्थ स्नान के समय पहुंच गए, लेकिन किसी और को दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल ओनली नानक साहब जी को दिखाई दे रहे थे। तब नानक साहब जी की उनकी काफी देर वार्ता हुई एकांत स्थान पर, अन्य व्यक्ति नहा रहे थे उनसे 50-60 फुट की दूरी पर बैठ के किनारे पर। अब नानक जी बोलते सुन रहे हैं, कबीर जी नहीं दिख रहे किसी को। अन्य नहाने वाले लोग देखते हैं कि भगत किससे बातें कर रहा है। दूसरे कहते हैं भगता की भाई ऐसी अटपटी बातें होती हैं, ये अपनी कोई ध्यान मगन है, आप अपना काम करो, स्नान करते रहो। कुछ देर में नानक साहब ने कहा कि मैं आपको जब मानूंगा मुझे तुम खोज देना। नानक साहब ने डुबकी लगाई दरिया में और सबने देखा कि नानक साहब ने अचानक डुबकी लगा दी, कपड़े उतार रखे हैं। उधर से परमात्मा ने उनको निकाल लिया, एड्रेस कर दिया और कहीं और स्थान पर ले जाकर सारी वार्ता की, और फिर सचखंड लेकर गए सतलोक में। उधर के लोगों ने स्नान करने वालों ने सोच लिया कि नानक जी डूब कर मर गए, गांव में भागे आए। राजा के यहां नौकरी करते थे, उनका बहनोई भी वहां राजा के यहां नौकरी करता था, उसकी अच्छी जान पहचान थी। तो राजा ने नवाब ने गोताखोर भेज दिए, जाल लगवा दिया, वो जा रहे अप स्ट्रीम में, जाल वाले ढूंढ रहे डाउन स्ट्रीम में, नहीं पाए, मर्द समझ लिया। सचखंड दिखाया, फिर वापस भेज दिया और कहा मैं बनारस में काशी में धानक का काम करता हूं। तो नानक जी का यह बात जची नहीं कि परमात्मा धानक का काम कैसे करता होगा। फिर भी परमात्मा के वचनों पर विश्वास करके वापस आते ही, वापस आए तीसरे दिन दिखाई दिए उसी किनारे पर, सब जगह खुशी की लहर होगी कि जीवित आगे जीवित आगे। नौकरी त्याग दी, पहली उदासी पहली यात्रा बनारस की। वहां खड्डी में बैठे देखे दुलाहे का काम करते हुए पूर्ण परमात्मा। तब नानक जी साहब ने कहा था पाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब
महला पहला पृष्ठ नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 है, इसमें क्या लिखा है, एक स्वाइन दो स्वानी नाल भग के भोकाई सदा बियाल कूड़ छुरा मुठा मुर्दार धानक रूप रहा करता है। हमारे यहां पूरे पाकिस्तान तक जुलाहे को धानक बोलते हैं। मैं पथ की बिंदन करने की कार वो बिगड़ रूप रहा विकराल तेरा एक नाम तारे संसार है, तेरा एक नाम तारे संसार है, मैं एहो आस एहो आधार मुख निंदा आख्या दिन रात पर घर जो ही नीच मनात काम क्रोध तन वसे चंडाल ये धानक रूप रहा करता है। फाई सूरत मुलुक की वेश ऊठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा भोता भार ये धानक रूप रहा करता है। मैं कीता न जाता हराम खोर ऊ किया मु देसा दुष्ट चोर नानक नीच कहे विचार ये धानक रूप रहा करता है। गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 721 महला पहला एक अर्थ गुप्तम पेश तोदर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। सदस्य लिखा है एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी मम सर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐंच नदानी जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तमगीर आखिर बेप्तम कस नदारद चू सब तकबीर सब रोज गस्तम दरवाहा करदेम बदी ख्याल गाहे न नेकी कार करदम मम ई नीची अवहाल चीनी अहवाल बद बखत हम चू बखील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखा के। अब इसमें क्या बताया कि नानक साहिब जी जब वहां पहुंचे सबसे पहले वो रामानंद जी के आश्रम में गए क्योंकि कबीर साहब ने कहा था मेरा प्रथम गुरु रामानंद जी है, मैंने उनको गुरु धारण कर रखे। परमात्मा ने वैसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए गुरु अवश्य हो क्योंकि ये काल के दूत फिर कह देते आजकल जैसे आज दास ने सुबह बताया था कि इस राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक कहते हो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था जिस कारण से वो भूत बना अपनी शिष्य बुक्की में बोलता था हुक्का पीता था और फिर रोटियां खाता था उस बुक्की के माध्यम से वो प्रेत बन गया। तो यदि परमेश्वर कबीर जी ने ये अपने गुरु की मर्यादा को ना एक फॉर्मेलिटी की होती स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था लेकिन ज्ञान गुरु रामानंद जी को परमात्मा ने ही दिया था इसलिए कि आने वाले समय में ये काल के दूत इनका दाव ना लग जाए कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था तुम परमात्मा कहते हो और वो कह देते इसी प्रकार हमारे भी परम धनी लेकिन तो परम धनी वाला सवाल खत्म हो गया शिवदयाल जी का तो भूत बना हुआ है। तो इस करके नानक जी पहले रामानंद जी के आश्रम में गए थे और वहां कबीर परमात्मा के ज्ञान से बहुत से परिचित भक्त जन उनको मिले और यहां से वो चले थे जैसे सुल्तानपुर से चले थे बनारस में गए थे रस्ते में जो भी कोई साधु संत कहीं मिल जाते उनसे चर्चा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है तो कोई नहीं बता पाता था। जो ही रामानंद जी के आश्रम में गए कुछ भक्त वहां मिले उनसे चर्चा की अगर ये चर्चा करूंगा ये प्रश्न उत्तर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ कोई वो आए हैं प्रभु उनकी झलक है यहाँ पर। तो छोटे छोटे बच्चा ने भी और वहां बैठे थे उपस्थित आश्रम सब ने एक मिनट में सुना दी सारी कहानी सृष्टि रचना कबीर जी ने सुना रखी थी। तो नानक साहब बड़े प्रभावित हुए तब कहा कि मुझे उनसे मिला दो क्योंकि रामानंद जी के आश्रम से कबीर जी का स्थान काफी दूर था तो वहां से दो भक्त भेज दिया उनके साथ कि जाओ कबीर जी से मिलाओ।
कबीर जी के परमेश्वर के पास आए, वो तो एक धानक का काम कर रहे थे, दुलाहे का बैठे थे खड्डी में लीला कर रहे थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि मेरे की तरह गरीब और एक नेक व्यक्ति रहकर अपना गुजारा करते रहना, भक्ति भी करते रहना, और जुलाहे से कठिन काम नहीं होता, एक एक तार पूर पूर के और एक इतना लंबा कपड़ा बनना होता, बहुत समय लगता है, और फिर भी भक्ति की जा सकती है, गरीब व्यक्ति भी परमात्मा पा सकता, जैसे परमात्मा ने लीला करके दिखाई, हमारे लिए उदाहरण दिया। जब नानक साहब वहां गए तब कहता, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता मारिये, धानक रूप रहा करता। ये वही सो सतलोक में मैंने देखा था, वही परमात्मा है। ये कहते ये ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये छुपाए बैठा अपने आप को ठग है, ये भगवान है, आंखों में पानी भर के उस पुण्यात्मा ने वहां डंडोरा पीट दिया। और फिर कहा, एक अरज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवर्दिगार, कि हे प्रभु आपके चरणों में ए शब्द स्वरूपी राम, कौन करतार माने शब्द स्वरूपी राम, तू ही है हक्का कबीर सत कबीर, और तू बे ऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा, तेरे चाकरा फा खा के। नानक जी कहते, मैं तो आपके इन शिष्यों के भी पैरों की धूल हूं, क्योंकि जो ज्ञान इनको है मुझे नहीं आज तक। और उसके बाद नानक साहिब जी को परमात्मा ने उपदेश दिया, और बहुत देर तक डिटेल से बात हुई कि बच्चा इस ज्ञान को डिस्क्लोज नहीं करना, इस नाम को भी अभी किसी को नहीं बताना, काल का दाव लग जाएगा। अब सचखंड में देखने के बाद, सारी सृष्टि रचना से परिचित होने के बाद, नानक जी परमात्मा के बताए हुए प्रत्येक पद चिन्ह पर चले और प्रत्येक आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार आपको दिन में बताया था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी, आप बिचली पीढ़ी में आगे हो। अब ये काल के दूत ये नकली नाम दे रहे हैं, ये काल प्रेरित हैं, काल का और परमात्मा का एक संवाद हुआ था, तब काल ने कहा था तुम्हारे जो कोई संत आएगा उससे पहले मैं नकली संत भेजकर और सतलोक सचखंड की महिमा इतनी करवा दूंगा झूठे गुरुओं से, वो नकली जो है ना नाम देंगे और महिमा तेरी गाऊंगे सचखंड और सतलोक की। जो उनके पास नाम सही नहीं होगा वो गलत नाम देंगे, और महिमा सतलोक और सतपुरुष की कहेंगे, वो मेरे ही जाल में फंसे रह जाएंगे। काल ने कहा था कि जब तेरा संत जाएगा पीछे से तब कोई नहीं सुनेगा तेरे संत की, तो परमेश्वर ने कहा था ये मेरा काम है। मालिक को पता था कि इसके नकली दूत जो झूठे ये ज्ञान को प्रचार कर चुके होंगे, और फिर हम जाकर के अपने दास को भेजेंगे और फिर वो सत्य ज्ञान प्रचार करेगा, सबकी पोल खुल जाएगी, और वो पुण्यात्मा बच्चे मुझे पहचान लेंगे, हमारे ज्ञान से हमें पहचान लेंगे, यदि ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज हो जाता। ये नकली दूत भी यही ज्ञान यही नाम देते पाते हैं। आज आपको परमात्मा की पहचान नहीं होती और आप काल के जाल में फंसे रह जाते हैं। अपुणात्माओं, हम जो प्रसंग कर रहे हैं कि हमने परमात्मा को पहचानना है, और जब हमारे हृदय में यह पहचान हो जाएगी सचमुच कबीर इज गॉड, फिर नो प्रॉब्लम, फिर तो कोई समस्या नहीं रहेगी, फिर तो परमात्मा मोक्ष हुआ पड़ा है कति, बहुत ही आसान। अपुणात्माओं, ये हठ योग करके ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे बैठो, ये 80-80 हजार वर्ष बैठ के चले गए, उन्हें कुछ भी ना हासिल हुआ, और ये ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे बैठ के इरादा स्वामी धन धन सतगुरु वाले लिए जय गुरुदेव वाले, ये कहां ले जाएंगे पुण्यात्माओं को झूठा ज्ञान, और ये समाधि कहां लगावे, ध्यान कहां लाओगे, ना ना सतनाम का बेरा ना सचखंड का बेरा, वो सतनाम वो स्वर शब्द वो स्वर शब्द वो सतपुरुष और वो सतान और वो सतनाम, परमात्मा के झूठा ज्ञान है। और बात करे बिना ऊपर लियो मंजिल पे, मंजिल का एक कहना मेरा सतनाम ने ये सथान बतावे, अकल कहां गई इनकी। तो परमात्मा कहते हैं, अब परमात्मा को पहचानना है, अपनी पहचान आप कराने आए थे, जो लीला मालिक ने की है वो वेद गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, अपनी प्यारी अच्छी आत्माओं श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, फिर उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है। अब दिखाते हैं आपको वेदों में ये प्रमाण।
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में ये देखिएगा ऋग्वेद, ये 9-10 इकट्ठे ही जल्द है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रानला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटोदिया दरियागंज नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26, ये और भी बहुत मंत्र दास में लिखे हुए हैं, इनमें सब में प्रमाण है लेकिन हम मोटा मोटा लेंगे 26। इसमें अनुवाद है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा इन्होंने कबीर, ये देखो यहां कबीर शब्द लिखा कबीर अतः इन्होंने अपसर्ग लगा के कबीर ही कर दिया कबीर। हम इसको अभी जैसे पुनः कहो चाहे पुनर् कहो तो ये कबीर का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, ये अर्थ नहीं करना था। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ आत्मा को अच्छी आत्मा को मिलता है। अब आपको पहले ये कबीर शब्द क्लियर करते हैं। अब आपको ये कवि लिखो तो भी कबीर देव, हम कहते हैं कबीर साहब, देव माने परमेश्वर, कबीर माने कबीर, हम कबीर देव को कबीर परमेश्वर कहने लगे कबीर साहब, सिर्फ हम वह को वह बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, वेदों को हम वेद बोलते हैं। तो ऐसे सिर्फ लैंग्वेज का बोलने का अंतर है। ये देखिएगा जैसे यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है और इसमें यहां दो अपसर्ग लगा दिए रह हटाकर तो भी यजुर्वेद है। अब और इसको क्लियर करते हैं, ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेश कार्य प्रतिनिधि सभा दयानंद भवन 3/5 अष्टपली रोड निकट रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक है सक्सेना आर्ट्स प्रिंटर्स 26DSIDC ओखला फेस 1 नई दिल्ली गुरुभाषा। अब इसमें दिखाते हैं आपको 63 अध्याय 36 अध्याय है, इसका प्रथम मंत्र में रचम वाचम प्रपधे मनो यजु। अब ये जैसे इन्होंने कवि कर रखा है ऐसा कर दिया यजुहु कर दिया इन्होंने। अब इस ये समूल संस्कृत में इसका जब अनुवाद किया जाएगा तो जिसको ज्ञान है वो सही ढंग से इसका अनुवाद करना जानता है तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा, या यजु से कोई इसका अर्थ कर दे तो कोई लिंक नहीं रहेगा, फिर पहचाना नहीं जा सकता यजुर् ये किस विषय में जानकारी है। इसका अनुवाद यहां किया इसने दानंद ने, महर्षि दानंद ने, ये लिखा यजु, इसका यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल ठीक किया ये। अब यजु है, इसका अनुवाद करते समय लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, अगर इसका अनुवाद कर दे यज्ञ सतुतियों का संग्रह तो नहीं समझ सकते ये जानकारी किसकी है, तो यजु होते हुए भी अनुवादकर्ता ने यजुर्वेद लिखना पड़ा तभी समझा सा उसका कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। इसी प्रकार जहां कबीर इन्होंने कर दिया उस प्रकरण वसवा लिखना था वो कबीर देव, हम कबीर साहब बोलते हैं उसको। अब आइए उसी बात पर, अब आइए हम फिर ऋग्वेद दिखाते हैं आपको जहां पर इन्होंने कवि का अर्थ कर दिया कबीर का, वह लिखना था कबीर देव, जैसे यजु को यजुर्वेद लिखना पड़ा ऐसे ही यहां कबीर को कबीर देव लिखना पड़ेगा। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 हम पढ़ रहे हैं, यहां कबीर लिखा कबीर, हम इसको कबीर देव लिखेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, करने वाले यजमान भगत यानी साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है, करता हुआ यानी उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का निवारण करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर अन्य रूप धारण करके वह कांति में
परमात्मा कबीर देव सर्वज्ञ नहीं करना, कभी कोई सर्वज्ञ होता है? कबीर देव वो कबीर साहब विद्युत के समान यानी बिजली जैसी गति से शीघ्रता से क्रीड़ा करता हुआ अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को जो नेक आत्मा होती है श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना, अब 27 में लिखा है कि वह जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वो ऊपर रहता है तीसरे लोक में। द्यूलोक के यानी ऊपर तेजों में लोकों के अंदर ये तीसरे पृष्ठ पर तीसरे लोक में रहता है, वहां एक स्थान पर है, वहां से गति करके आता। अब दिखाते हैं, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 दिखाते हैं आपको, इसका 1 2 3 गति क्लियर कर देगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1। जो सर्व उत्पादक परमेश्वर प्रभु यानी सबकी सबका उत्पत्ति करता परमात्मा प्रकाश रूप, अरुष का अर्थ होता है तेजो में रूप, प्रकाश रूप यानी सह शरीर, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला पापों के हरण करने वाला है, वह राजेव राजा के समान दर्शनीय है। देखिए राजा के समान ये 269 पे हम पढ़ रहे हैं, 270 पे इसका शेष अनुवाद है। राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य साकार है, वेद बता रहे हैं, ये खुद अनुवाद कर रहे हैं और ये खुद मानते हैं भगवान निराकार है और वेद साकार बता है जिसमें उनके उसके गुण लिखे हैं, दर्शनीय है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे भक्त, अच्छे श्रेष्ठ आत्मा को जो दृढ़ भक्त है, आदरणीय गरीबदास साहिब जैसे, आदरणीय नानक साहिब जी जैसे दृढ़ भक्त को भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और कैसे होता है? जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। पुण्यात्मा पहले क्या था? कांसी धातु, कांसी कांसी धातु के थाली और बेले गिलास आदि हुआ करते थे। और वर्षा के दिनों में हमारी दादी हमारी माताओं से कहा करती थी काकीताइयों को कि तुम बाहर जो कांसी की थाली रखी हो बेला रखा हो उसको अंदर रख लो, वर्षा हो रही है और बिजली आकाशीय बिजली इस थाली कांसी की धातु पर अमूमन गिरती है। अब यहां के बताया है कि वो परमात्मा जिस प्रकार आकाशीय बिजली उस धातु पर ही गिरती है जहां उसका अट्रैक्शन आकर्षण होता है, ऐसे ही वो परमात्मा उस विद्युत के समान यानी उस अच्छी आत्मा को ही मिलता है जिस में वो गुण होते हैं जिस पर वो आकर्षित होता है ताकि वो उसके ज्ञान को आगे बढ़ा सके। जैसे गरीबदास साहेब जी को मिले उन्होंने डूंडा ठा दिया, नानक साहेब जी को मिलो उन्होंने तहलका मचा दिया, जहां भी गए वहां गुण गाए। और परमेश्वर कहते हैं चारों युग में संत पुकारे को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं चारों युगों में आया मैंने ऐसी लीला की और जिन संतों को मैंने अपने से परिचित कराया उन्होंने भी गुणगान किए मेरे इस सच्ची भक्ति के यथार्थ ज्ञान के, और हमने भी ढोल के डंके पर मैंने भी आवाज लगा लगा कर जनता को जगाया सच्चाई बताई। और ये चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। ये सत साधना रूपी सच्चे ज्ञान रूपी मोक्ष रूपी हीरे और मोती हम वर्षा कर रहे हैं सच्चे ज्ञान की, ये जनता उस अज्ञानियों के साथ लगकर ये डड़े ढो रही है, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, आन उपासना कर रहे हैं, झूठे मंत्र जाप करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो परमात्मा लीला किया करते हैं वही हमारे सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं और वही वो परमात्मा की प्यारी आत्मा जिनको भगवान मिले वो भी अपना अमृतवाणी में एफिडेविट देकर गए हुए कबीर इज गॉड। ये देखिए आगे
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। वह परमात्मा वर्णीय पुरुष जो अच्छी आत्मा होती है, श्रेष्ठ आत्मा को जो दृढ़ भक्त है, पक्का भक्त होता है, उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, आके गति करके आता है वहां से। और जिस प्रकार देखो चारों में शब्दायमान हो रहा है, वर्णीय पुरुष को मिलता है। और जिस प्रकार विद्युत सनेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी जहां उसी स्थान पर उसी धातु पर गिरता है जहां वो आ सकती है, ऐसे परमात्मा मिलता है। यहां देखिएगा दूसरे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 में, किस उद्देश्य से आता हूं भगवान? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सत्ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बहुत तेज चल कर आते हो, हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, इन्होंने सर्वज्ञ अर्थ कर दिया कबीर का। आप कबीर देव हैं, जैसे यजु लिखा था वहां पर, उन्होंने यजुर्वेद लिखा, ऐसे ही यहाँ कबीर देव लिखना है। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे परमेश्वर आप हमको सुख दें। अब इसमें तीसरे मंत्र में स्पष्ट किया है, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए वहां से चल कर आते हैं, आप हैं, आप सर्वव्यापक नहीं, आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। अब और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20, यहां स्पष्ट लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में, ये लिखा कबीर देव, पर कबीर देव वित्ते अवे, या देखिए वह परमेश्वर, यहां कबीर का अर्थ, ये कबीर देव है ऊपर लग रहा है, ये कबीर देव यहां लिखना था, वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, मेधावी है, है तेरे सब का रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए, यानी विद्वानों को ज्ञान देने के लिए, ज्ञान को विद्वानों को संतुष्ट करने के लिए यथार्थ ज्ञान देता है, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में त्रिकृष्ट करता है, यानी तत्व ज्ञान में हराता है। अब पुण्य आत्माओं, अब ये ऐसा ज्ञान है, इतना निर्मल ज्ञान है, इतना आनंद आता है इसके सुनाने और सुनने में। अब 2 घंटे हो गए, अब तो जो दास चाहता था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, उसकी और अन्य पहचान क्या है, ये बहुत सी बातें आपको बतानी थी, समय 2 घंटे से ऊपर हो गया। अपने आत्मा जो वेद गवाही देते हैं, आंखों देखा संत बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है, ऐसी लीला जो वेदों में वर्णित है, किसी भी जिनको हम भगवान मानते आए हैं एक की बता दो, नहीं है तो वो भगवान नहीं है। अब उस परमात्मा को जिन्होंने पहचाना, अभी आपको बताया 2 महापुरुषों की तो थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दी, वैसे बहुत डिटेल है इनकी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय गीसादास साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मुरुखदास साहेब जी, आदरणीय नामदेव साहेब जी, इनको भी परमात्मा मिले थे। अब इन्होंने परमात्मा की जानकारी के उपरांत हमें क्या सलाह दी है, क्या बताया है? मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। गरीबदास साहेब जी को परमात्मा मिले, उसके बाद सद्ज्ञान समझ में आया, तो हमारे लिए उन्होंने ये एफिडेविट बनाकर छोड़ दिए। हमें क्या समझाना चाहा कि तुम्हारे साथ ये मन ऐसा एलिमेंट लगा दिया काल ने, ये सत्य ज्ञान को सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि काल का दूत है ये। आप जैसे कोई राधा स्वामी पंथ में फटोरिया है, आंखें नीचे बैठे श्रद्धालु नुकति और वहां खखनी, नो ऑब्जेक्शन। जैसे जय गुरुदेव के चले गए भोली आत्मा, वहां भी कुछ खखनी उनके पास और वहां भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और अन्य साधना कोई देवी देवता पूजता है, कोई तीर्थों पे जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और फिर इनको ये कहा जाए कि चलो बरवाला में ऐसा ऐसा ज्ञान दिया जाता है, ऑब्जेक्शनों की कमी नहीं। फिर काल इनको होशियार बना देता हुआ, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा हमने कभी नहीं सुना। जो नहीं सुना वही तो सुना रहे हम, इसको सुनोगे तो समझ में भी आएगा। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी कि इस मन की ऐसी सचिति है, जैसे बहरा व्यक्ति हो ना, जिसको कम सुनता हो, उसको कोई बात कहता है तो कहता सुना नहीं मैंने, और फिर जोर से बोला नू करेगा, और उसके मतलब की बात हो जब होगा मैंने सारी सुन दी, के बतलाओ हो मैंने सारी सुन दी, यानी अपने मतलब की जब मैं पकड़ गया, और काम होने का मन ना सुनता, कम सुने हैं। अब इस मन को कोई यूं कह दे कि चलो सत्संग में चलते हैं, तो सो आना कानी करता है, टाइम को ना, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। और थोड़ी सी देर में कोई कह दे आ जाओ वहां फिल्म देखने चलेंगे, चल चलेंगे, दो मिनट में तैयार हो जाए,